नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ऑटो कंपनियों के लिए पिछला महीना बिक्री के लिहाज से अच्छा रहा और इस दौरान महिंद्रा, रॉयल इनफील्ड तथा अशोक लेलैंड ने बिक्री में बढ़ोतरी की सूचना दी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सोमवार को कहा कि अप्रैल में उसकी कुल बिक्री 25% बढ़कर 45,640 इकाई हो गई। इससे पहले अप्रैल 2021 में उसकी कुल बिक्री 36,437 इकाई थी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि घरेलू बाजार में उसके यात्री वाहनों की बिक्री अप्रैल में 23% बढ़कर 22,526 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 18,285 इकाई थी। समीक्षा दिन माह में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री अप्रैल 2021 में 16,147 इकाई की तुलना में बढ़कर 20,411 इकाई हो गई। M&M ने बताया कि पिछले महीने उसका निर्यात 2,703 इकाई रहा, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 2,005 इकाई था। रॉयल इनफील्ड की बिक्री अप्रैल में 17% बढ़कर 62,155 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने 53,298 इकाइयां बेची थी। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने सोमवार को बताया कि अप्रैल में कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 42% बढ़कर 11,847 हो गई। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने पिछले साल इसी महीने में 8,340 इकाइयां बेची थी। अशोक लेलैंड ने बताया कि उसकी घरेलू बिक्री 41% बढ़कर 11,197 इकाई हो गई, जो अप्रैल 2021 में 7,961 इकाई थी। बजाज ऑटो लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि अप्रैल 2022 में उसकी कुल बिक्री 20% घटकर 3,10,774 इकाई रह गई। बजाज ऑटो ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 3,88,016 इकाइयां बेची थी। समीक्षाधीन माह में कुल घरेलू बिक्री 24% घटकर 1,02,177 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 1,34,471 इकाई थी। कंपनी का निर्यात भी इस दौरान 18% घटकर 2,08,597 इकाई रहा, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 2,53,545 इकाई था। बजाज ऑटो ने बताया कि बीते महीने घरेलू बाजार में दो पहिया वाहनों की बिक्री 26% घट गई, जबकि निर्यात में 15% की गिरावट हुई। प्रमुख शेयर सूचकांकों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट हुई। इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली के साथ ही कमजोर वैश्विक रुझानों के चलते ऐसा हुआ। इस दौरान BSE सेंसेक्स 648.25 अंक गिरकर 56,412.62 पर था। NSE निफ्टी 185.3 अंक गिरकर 16,917.25 पर आ गया। सेंसेक्स में टाइटन, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, मारुति और बजाज फिनसर्व गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर इंडसइंड बैंक, NTPC और एक्सिस बैंक में बढ़त हुई। अन्य एशियाई बाजारों में सोल और टोक्यो के बाजार मध्य सत्र के सौदों में कमजोर थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.87% गिरकर $106.21 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 3,648.30 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की तेजी के साथ 76.44 पर खुला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि हालांकि घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख और विदेशी बाजार में डॉलर के मजबूत होने से रुपये की बढ़त कुछ कम हुई, अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 76.48 पर मजबूत खुला और बढ़त दर्ज करते हुए 76.44 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 6 पैसे की तेजी दर्शाता है। पिछले सत्र में रुपया डॉलर के मुकाबले 76.50 पर बंद हुआ था। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.43% बढ़कर 103.40 पर आ गया। इस बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.94% गिरकर $106.13 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुकाबले विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 3,648.30 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। भारत में टू व्हीलर सेक्टर के बाइक सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में उन बाइकों को काफ़ी पसंद किया जाता है जो कम मिड रेंज में आती हैं और इन बाइकों में मिलता है प्रीमियम डिज़ाइन और दमदार स्पीड। मिड रेंज में मौजूद स्पोर्ट्स बाइकों में आज हम बात कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम 200S के बारे में, जो अपने सेगमेंट की एक पॉपुलर बाइक है जिसे इसके आकर्षक डिज़ाइन और स्पीड के अलावा कीमत के लिए भी पसंद किया जाता है। हीरो स्पेक्ट्रम 200S की शुरुआती कीमत 1,30,614 रुपये है, जो ऑन रोड होने पर 1,53,362 रुपये हो जाती है। ऑनलाइन डाउन पेमेंट और कैलकुलेटर के मुताबिक अगर आप इस स्पोर्ट्स बाइक को खरीदते हैं तो बैंक इस बाइक पर आपको 1,38,362 रुपये का लोन देगा। इस लोन के बाद आपको 15,000 रुपये की न्यूनतम डाउन पेमेंट देनी होगी और उसके बाद हर महीने 4,445 रुपये की मंथली EMI चुकानी होगी। हीरो स्पेक्ट्रम 200S पर मिलने वाले इस लोन को चुकाने के लिए बैंक ने 3 वर्ष की समय अवधि तय की है, जिसके साथ दिए जा रहे लोन अमाउंट पर बैंक 9.7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। सुधाकर TN ने रविवार को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। GSL ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सुधाकर ने BB नागपाल की जगह ये प्रभार लिया है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि सुधाकर ने अपने करियर की शुरुआत BHEL के साथ की थी। वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 10 फरवरी 2016 को निदेशक के तौर पर जुड़े थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।